क्या था, रूप वही, रूप नया। गाथा में आप सुन रहे हैं अलका सैनी की लिखी कहानी कटी पतंग का दूसरा भाग। फिर एक दिन उनकी कॉलोनी में समाज सेवा के तहत शिकायत निवारण शिविर लगा। अपनी सहेली के साथ वह उस शिविर में गई जहां पर राज्य के गणमान्य व्यक्ति अधिकारी गण सब मौजूद थे। उस शिविर में अपनी कॉलोनी की समस्याओं को जिस बखूबी से उसने सबके सामने रखा तो अधिकारी गण के समूह ने सभी काम तुरंत करने के वही निर्देश दे दिए। एक तरफ बैठे विधायक महोदय रामस्वरूप ने सस्नेह उसे अपने पास बुलाया और उसका परिचय लेने लगे। बेटी, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या असुविधा हो तो बेझिझक मेरे कार्यालय में आ जाना। मुझसे जो बन पड़ेगा यथासंभव तुम्हारी मदद करूंगा। विधायक के मुंह से इस तरह का आश्वासन पाकर उर्वशी का मन खुश हो गया। मन ही मन वह विधायक महोदय के व्यक्तित्व से गहराई से प्रभावित थी। वह मन ही मन हवाई किलों का निर्माण कर आसमान में उड़ने लगी। फिर अचानक उस पतंग का धागा वहां से भी टूट गया और तेज हवा चलने से वह फिर से आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ कर दिखाने का मौका उसे भगवान ने दे दिया है। एक बार विधायक महोदय से जब उसने कोई काम दिलवाने की बात कही तो उन्होंने उसे अपने चमचे बनवारी के पास भेज दिया। उस शहर में बनवारी के कई कॉल सेंटर चलते थे। बनवारी ने उसे कॉल सेंटर में नौकरी करने की पेशकश की। उर्वशी रात में कॉल सेंटर में काम पर जाने से झिझक रही थी तो बनवारी ने समझाते हुए कहा, देखो उर्वशी, अगर तुम कॉल सेंटर में काम करोगी तो दिन भर तुम्हें साथ साथ समाज सेवा भी करने का मौका मिलेगा। इसमें भी मैं तुम्हारा भरपूर सहयोग करूंगा। मुझे अपना दोस्त और हमदर्द समझो। बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ पल सुकून के तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं तुम्हें राजनीतिक दावपेच भी सिखा दूंगा। पता नहीं बनवारी की बातों में कैसा सम्मोहन था कि वह उसकी तरफ आकर्षित हो गई। वैसे भी घर पर तो उसे ना ही प्यार ना ही कोई सम्मान मिला था आज तक, बल्कि हर समय दुत्कार ही मिलती थी। उसे लगा जिस प्यार की तलाश उसे है शायद उसे पाने का समय आ गया है। मन ही मन सोचने लगी कि जिस इंसान के लिए उसने अपने समाज, अपने माता पिता की परंपराओं, अपने जीवन तक को दांव पर लगा दिया, उसने आज तक दो पल सुख के उसे नहीं दिए थे। धीरज का नीरस व्यवहार, घर की आर्थिक हालत, बच्चों की परवरिश को लेकर बढ़ती जिम्मेवारियां और भविष्य के सुनहरे सपनों का सारा संसार उसके सामने मुंह खोल कर खड़ा था और उसे अपनी तरफ बुला रहा था। उर्वशी ने बनवारी की हर बात में हां मिलाती चली गई। मन ही मन सोचने लगी, ईश्वर खुद थोड़ा ना किसी की मदद करने आते हैं, किसी इंसान को ही तो फरिश्ते के रूप में भेजते हैं। पार्टी में भी उसने अपनी काबिलियत और मेहनत के बलबूते पर अच्छा नाम कमा लिया था। आए दिन किसी ना किसी प्रोग्राम में भाग लेने जाती और इस तरह वह बहुत व्यस्त हो गई कि वह भीड़ में खुद को ही भूलती गई। बस एक आवेग में वह बहती जा रही थी। जब भी उसके पास कोई भी किसी काम से आता तो उसे बहुत अच्छा लगता और अपनी ओर से पूरा आश्वासन देते हुए कहती, आप लोग चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा, बस आप लोग मुझे अपना सहयोग और आशीर्वाद देते रहें। हर रोज उसकी दिनचर्या में वह सुबह जल्दी उठकर सब काम निपटाकर तैयार होकर बैठ जाती ताकि किसी काम से आने वाले को इंतजार ना करना पड़े। अपने अंदर वो अजीब सा साहस महसूस करती। घर बाहर बच्चे सभी काम वो बखूबी संभाल रही थी। अद्भुत शक्ति की मालकिन थी उर्वशी। अपने इलाके के कई बुजुर्ग लोगों और विधवा औरतों की पेंशन का काम भी उसने दिन रात एक करके कर दिखाया, जिससे हर बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देता, थकता नहीं था। परंतु उर्वशी इतनी खुददार थी, या फिर उसकी कमजोरी की लोगों के काम तो विधायक महोदय से कहकर करवा लेती, परंतु अपने किसी निजी काम के लिए बोलने के लिए उसकी जुबान को ताला लग जाता था। बरगद पर अटकी हुई उस पतंग की डोर किसी के हाथ में आ गई। वह उसे अपनी ओर खींचने लगा। मौसम भी साफ हो गया, हवा भी रुक गई थी। वह पतंग आसानी से उस आदमी के कब्जे में आ गई। एक दिन वह कॉल सेंटर में अपने ऑफिस में बैठी कुछ सुस्ता सी रही थी। कई ख्याल दिमाग में आ जा रहे थे कि अचानक वहां बनवारी आ गया। उसे देखकर उर्वशी एकदम से झेंप गई और अपने काम में व्यस्त होने का अभिनय करने लगी। बनवारी उसके पास आकर बैठ गया और पूछने लगा, क्या बात है उर्वशी? कई दिनों से देख रहा हूं कुछ उखड़ी उखड़ी सी हो, क्या कोई बात है मन में क्या?
नहीं बनवारी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस दिन भर सामाजिक कामों में उलझी रहती हूं और रात को यहां की ड्यूटी, थक जाती हूं, मन नहीं लग रहा आजकल किसी काम में।
क्यों, तुम्हारे पति तुम्हारा हाथ नहीं बटाते क्या?
मैंने तो उन्हें किसी कार्यक्रम में तुम्हारे साथ आते जाते भी नहीं देखा।
नहीं बनवारी जी, कामकाज की इतनी बात नहीं है, असल में घर की जिम्मेवारियां दिन भर बढ़ती जा रही हैं
और सामाजिक एवं राजनीतिक दायरा बढ़ता जा रहा है और खर्चे भी बढ़ गए हैं, परंतु आमदनी वहीं की वहीं। उर्वशी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को दिन भर अपने ऑफिस संभालने का काम दे सकता हूं, जिससे उसकी एक्स्ट्रा आमदनी हो जाएगी। यह सुनकर उर्वशी की बांछें खिल गईं। वह बार बार बनवारी का एहसान मानते हुए उसका शुक्रगुजार करने लगी। मन ही मन उर्वशी सोचने लगी कि बनवारी जी कितने नेक इंसान हैं। इतना नाम पैसा शोहरत होने पर भी अहंकार रत्ती भर नहीं है उनमें। अरे कहां खो गई उर्वशी? चलो आज काम की छुट्टी करो, कहीं चलकर कॉफी पीते हैं, तुम्हारी थकान भी उतर जाएगी। आज घर जल्दी जाकर आराम करो, सुबह अपने पति को मेरे ऑफिस लेकर आ जाना। इस तरह उर्वशी बनवारी के एहसानों के तले दबती जा रही थी और उसकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाती। एक दिन उर्वशी शाम को अपने कॉल सेंटर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बनवारी था और कहने लगा, उर्वशी आज ऑफिस से छुट्टी कर लो, मैंने आज एक छोटी सी पार्टी रखी है और मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं, मुझे पास वाली मार्केट में मिलो। उर्वशी बनवारी पर इस कदर भरोसा करने लग गई थी कि मना ना कर सकी। बनवारी उसे लेकर एक बड़ी सी बिल्डिंग में पहुंच गया और सीढ़ियां चढ़कर एक फ्लैट के दरवाजे को उसने चाबी से खोला और उर्वशी को अंदर आने के लिए कहा। अंदर मेज पर एक खाने पीने का सामान और एक शराब की बोतल पड़ी थी। उर्वशी ने झिझकते झिझकते पूछा, बनवारी जी यहां पर तो कोई और नहीं है हमारे अलावा? अरे घबराओ ना, थोड़ी देर बैठकर बातें करेंगे, कुछ विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से बात करके मन हल्का हो जाएगा। कहते कहते बनवारी ने दो गिलासों में शराब डालनी शुरू कर दी और एक गिलास खुद ले लिया और दूसरा उर्वशी की तरफ बढ़ा दिया। उर्वशी मना करते हुए बोली, बनवारी जी मैंने कभी शराब नहीं पी आज तक। तो कोई बात नहीं, हर कोई पहली बार कभी ना कभी तो पीता ही है, ले लो शर्माओ मत। राजनीति में आगे बढ़ना है तो यह सब तो बहुत आम सी बातें हैं। झिझकते झिझकते आखिर उर्वशी ने गिलास पकड़ लिया। उसे हल्का हल्का सुरूर सा होने लगा तो बनवारी कहने लगे, मुझे मालूम है उर्वशी, तुम्हें अपने पति से वो प्यार वो सुख कभी नहीं मिला जिसके तुम हकदार हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारे हर सुख दुख को समझता हूं और तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। उर्वशी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, परंतु वह उसकी बातों में फंसती जा रही थी। और इस तरह उसके मन में कई तरह के विचार आ जा रहे थे। वह जानती थी कि वह सही ही तो कह रहा है कि उसके पति ने आज तक वो प्यार वो सुख नहीं दिया उसे। यही सोचते सोचते वह शराब के सुरूर में डूबती जा रही थी। बनवारी उसे अपनी योजना बताने लगा। उर्वशी, मेरी तरकीब है कि आगामी चुनावों में मैं विधायक महोदय को हरा दूं और उसकी जगह ले लूं। अगर तुम मेरा साथ दो तो बदले में मैं तुम्हें हर सुख और ऐशो आराम दूंगा। यह कहते कहते उसने अपना बायां हाथ उर्वशी के कंधे पर रख दिया। चाहते हुए भी आगे के हसीन सपने देख वह बनवारी को मना नहीं कर पाई। धीरे धीरे उसका हाथ बढ़ा और उर्वशी के सारे शरीर में घूमने लगा। उर्वशी को भी कुछ नशा सा लगने लगा। वैसे भी वह उसके आभार तले दबी हुई थी। सोचने लगी कि जो काम पति नहीं कर सकता अगर बनवारी कर रहा है तो उसमें खराबी क्या है। धीरे धीरे वह भी फिसलने लगी। आचरण में पवित्र रहने वाली उर्वशी न जाने कब बनवारी की बाहों में नंगे बदन सो गई। जब नींद खुली तो सर भारी भारी सा लग रहा था और अपराध बोध भी मन को घेरने लगा था। मगर शास्त्रों में उसने कई बार पढ़ा था। शास्त्रों के अनुसार नियोग की हालत में दूसरे पुरुष से संबंध बनाने की अनुमति दी जाती है और इसे पाप नहीं माना जाता। और प्राचीन काल में भी यह मान्यता प्राप्त कृत्य था। तरह तरह के विचारों से अपने आप को ढांढस बंधाती और पाप पुण्य के द्वंद्व से ऊपर उठने का बार बार प्रयास करती रही उर्वशी। बनवारी ने उर्वशी की उलझन को सुलझाने का प्रयास किया। उर्वशी, कार्ल मार्क्स का नियम शायद तुमने पढ़ा होगा कि जो चीज आसानी से हासिल नहीं होती उसे छीन झपट के कब्जे में किया जाता है। तुमने कोई अपराध नहीं किया है। जो कुछ हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ और जहां सहमति हो उसे गलत नहीं माना जाता। आजकल तो हर क्षेत्र में महिलाएं अलग अलग हथकंडे अपना कर तरक्की करना चाहती हैं और तुम इतना सोच विचार कर खामखा अपने को कसूरवार मान रही हो। हम दोनों दोस्ती के नाते एक दूसरे से हर दुख सुख बांट सकते हैं। धीरे धीरे उर्वशी और बनवारी की चाहत शारीरिक भूख की तृप्ति की आदि होती गई। उर्वशी को तो अब किसी भी तरह जीवन में सबको कामयाब होकर दिखाना था, इसलिए वह अब अपने मन में किसी तरह का गलत विचार ना आने देती। क्योंकि घर की चिक-चिक से दूर उसे वक्त बिताना अच्छा लगता था। उसे बनवारी में अपना सच्चा प्यार नजर आने लगा। पर उसे क्या पता था कि हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जिस्मानी संबंध बहुत आम सी बात है। अगर एक आदमी कई औरतों से रिश्ता रख सकता है तो क्या एक औरत ऐसा नहीं कर सकती। और स्वेच्छा से किया पर किए प्रेम अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कहीं कहीं तो कितने अखबारों में तो उसने औरतों और मर्दों की दोस्ती के लिए बने ऐसे कई क्लबों के बारे में भी पढ़ा हुआ था। विभिन्न किस्म की परिभाषाएं वह अपने मन मस्तिष्क में खोजती हुई विचारों के महासागर में गोते खाती रहती। इस तरह वह बनवारी को अपना तन मन आत्मा दिल सब कुछ सौंप चुकी थी और उसे एक मसीहा समझते हुए अपना सच्चा हमदर्द समझती थी। उसे सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने स्थानीय चुनावों में खड़े होने के लिए बनवारी से भरोसा मांगा तो उसने बदले में उसे कहा, उर्वशी, मैंने जो मेरी तरफ से हुआ तुम्हारी हर संभव मदद की, परंतु ये मेरे भविष्य का सवाल है और राजनीति में मेरा असूल है कि मैं पढ़े लिखे लोगों पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस आदमी ने उस पतंग को उड़ाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु संभाल ना पाया तो उसका धागा टूट गया और वह पतंग फिर से आसमान में उड़ने लगी। अभी आप सुन रहे थे अलका सैनी की लिखी कहानी कटी पतंग का दूसरा भाग। गाथा में इसे आपके लिए प्रस्तुत किया शिवानी आनंद ने।